एक समय के मां संजय जो है सो संत सुजात ऋषि को बुलाकर के और धृतराष्ट्र को उपदेश दिलाया। ये कथा महाभारत के उद्योग परमाती उन्होंने बहुत सा उपदेश दिया, उनमें एक यह बात भी थी कि प्रमाद ही मृत्यु है। अब उसका थोड़ा मैं विस्तार के लिए कहता हूं, उन्होंने तो सिद्धांत बदला दिया। अब आप सब लोग एक प्रकार से विचार करके देखो कि प्रमाद तो क्या है और प्रमाद मृत्यु क्यों है। तो प्रमाद का अर्थ यह है कि करने योग्य जो कार्य है उसको न करना प्रमाद है, न करने योग्य काम को जो करना है वो प्रमाद है। तो न करने योग्य काम करके के अपने मनुष्य का जितना जीवन है वो नष्ट करना है, बल्कि बार बार मृत्यु के मुख में पड़ना है। क्योंकि न करने योग्य जो है या तो व्यर्थ काम है या पाप कर्म है, तो पाप कर्म और व्यर्थ काम दोनों काम से है, इसलिए प्रमाद है। और उसमें जितना समय जाता है उतना समय तो नष्ट हुआ ही, इसलिए प्रमाद है, सो कहा है मृत्यु है। हमारा समय है उतना व्यर्थ जाएगा, आपने समय की काल के मुख में चलाया, इसलिए वो प्रमाद मृत्यु है। दूसरी बात यह है उस व्यर्थ चेष्टा का और पाप कर्म का फल यह होता है कि उसका फल है दुख। दुख होने के लिए जो नाना प्रकार की जन्म लेना पड़ता है, तो जन्मना मरना इस वास्ते प्रमाद में मृत्यु हुआ। कर्तव्य कर्म का पालन न करना भी इसको प्रमाद है। जैसे मनुष्य का कर्तव्य है यज्ञ करना, दान देना, तप करना, दूसरों का उपकार करना, तीर्थ करना, व्रत करना, माता पिता की सेवा करना, कोई अतिथि आओ तो उसकी सेवा करना, ईश्वर का भजन करना, ध्यान करना, ईश्वर की जो भक्ति है वो करना, स्तुति प्रार्थना ईश्वर से करना, जो स्तुति स्मृति इतिहास पुराण इसका स्वाध्याय करना, वेदों का स्वाध्याय, उपनिषदों का स्वाध्याय, गीता का स्वाध्याय, रामायण का स्वाध्याय, माने उसका मन लगाकर अध्ययन करना, उसके अर्थ और भाव को समझना, शत्रुओं का शरण करना, मन और इंद्रियों का विश्व से संयम करना, संसार से वैराग करना, इत्यादि मनुष्य के लिए कर्तव्य बतलाए गए बहुत से आत्मा की कल्याण के लिए। जिससे आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का उद्धार हो, ये मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मा के उद्धार के लिए यानी कल्याण के लिए करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। उसका न करना ये प्रमाद है, क्योंकि हम सब नहीं करेंगे तो आंख में मरेंगे ना, तो यहाँ प्रमाद ही हमारे लिए मृत्यु हो। सब करके अपना काम बना लेते तो फिर क्यों मरते, सदा के लिए अमर हो जाते। तो मरने के मां हेतु प्रमाद हुआ, इसलिए प्रमाद ही मृत्यु। अब ये ख्याल करना है कि कभी निकम्मा नहीं जाना, और काम अपनी बुद्धि में अपनी समझ में जो बढ़िया से बढ़िया काम अपने जो विशेष हित के काम है वह करना। तो जिससे हमारा कल्याण हो वही काम करना। तो तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन करना है वो हमारा मुख्य कर्तव्य है, उसको अवश्य करना चाहिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के वहां मिलन क्यों हो रहा है? प्रमाद के कारण। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब क्यों हो रहा है? कि संसार के विषय भोगों में आसक्ति के कारण है। संसार के विषय भोगों में आसक्ति क्यों है? कि उनके मन जो सुख बुद्धि, उनमें सुख बुद्धि क्यों है? कि अज्ञान से, तो मूल हेतु अज्ञान है। तो उस अज्ञान का नाश कैसे हो? ज्ञान से। इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? साधना से। ज्ञान का फल क्या है? कि परम शांति। साधन तेज कैसे होती? श्रद्धा से। श्रद्धा कैसे हो? कि अंतःकरण की शुद्धि से। अंतःकरण की शुद्धि किससे हो? कि निष्काम भाव से, परोपकार करने से। परोपकार कैसे हो? कि परोपकार हमारे आत्मा के उद्धार में प्रधान एक साधन है। तो इस प्रकार से समझ कर करके अपना जो मुख्य जो कर्तव्य वो करना चाहिए। परमात्मा के सिवा और क्या हेतु है? जो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब हो रहा है उसमें और क्या हेतु है? और हेतु यह है हम परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। धोखाबाज से भगवान कैसे मिले? वो परमात्मा को धोखा देना नहीं है, वो वास्तव में अपने आत्मा को धोखा देना है। परमात्मा में तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो अपने आप को धोखा देना है। तो सबसे बढ़कर सरल उपाय क्या है? कि भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना, भगवान को सब कुछ समर्पण कर देना। भगवान की सब चीज है और भगवान को समर्पण कर देना, अपने आप को भी भगवान के समर्पण कर देना। और जिसकी माँ ये भाव है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसको भी भगवान के समर्पण कर देना। जो चीज हमारी नहीं है वो तो हम भगवान के क्या समर्पण करें? वो तो भगवान के पास ही अर्पण है। जितने मैं और मेरापना है, जहाँ मैं ऐसा विमान है, जहाँ मेरा ऐसा विमान है, उन पदार्थों को भगवान की अर्पण करना। ये जो शरीर है इसमें मैं भाव है, तो शरीर को भगवान के समर्पण करना। और शरीर से समझ रखने वाले जितने पदार्थ है, सजीव निर्जीव, माने रुपया निर्जीव है, अस्थि पुत्र धनी सजीव, अस्थि पुत्र सजीव है, तो इन सबको भगवान के समर्पण कर देना। समर्पण करना क्या है? हे भगवान, ये आपकी चीज ही आपके अर्पण की जाती है, सब चीज आपकी है, हमारी है नहीं। हमने भूल से अपनी मांगी तो उस भूल को हम हटा देते। तो ये आपकी चीज है, आपकी समर्पण है। तो भगवान की चीजों के ऊपर जो ये अभिमान के लिए आता है, वो मैं, तो मेरे अपने का अभिमान हटा दिया। ये भगवान की चीज भगवान की अर्पण करनी है। अब भगवान की चीज भगवान की अर्पण कर दी तो ईमानदारी से, सच्चाई से ही वो करनी चाहिए। सब कुछ भगवान की अर्पण कर दिया, अब फिर उस चीज को अर्पण कर करके उसका हम उपभोग करें या उस पर अपना अधिकार रखें, ये तो नहीं मानी है। ये तो एक प्रकार से भगवान को धोखा देना। तो हम भगवान को धोखा देते हैं, इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते। कहते हैं सब चीज आपकी और भगवान की अर्पण कर दी, और फिर उसे चीज पर अपना अधिकार रखते हैं ना, तो ये चोरी है। तो चोरी है सो पांच प्रकार की। एक तो समय की चोरी, और दूसरी जो है शरीर की चोरी, और तीसरी जो बात है जो ईश्वर जो है और क्या वगैरह इनकी चोरी, चौथी जो है सो मन की चोरी, पांचवी बुद्धि की चोरी, ये पांचों भगवान के अर्पण कर दिए गए कि सब जितने पदार्थ ईश्वर जो है ये सब भगवान के, और ये हमारा शरीर है ये भी भगवान का, मन भी भगवान की अर्पण कर दिया, बुद्धि भी भगवान की अर्पण कर दी, रखी कौन सी चीज, बोले नहीं सब भगवान के अर्पण करते हो, सब भगवान की है ना, बोले भगवान की। तो फिर हमारे पास में जो रुपया है और जिसमें मानता है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा रुपया, वो सब चीज भगवान के अर्पण कर दी, बोले कर दी, तो तुम्हारी है भगवान की, बोले वास्तव में तो पहले भी भगवान की थी और अभी भगवान की है, बीच में मैंने मान ली थी, स्वयं प्रकाश से मैं वापिस भगवान की थी, भगवान को लौटाए, भगवान के अर्पण कर दी, बहुत ठीक है। अब जिन रुपयों के ऊपर तुम शासन रखते हो, रुपया तुम्हारा कि भगवान का, बोले भगवान का, तो शासन क्यों रखते हो, बोले खाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, खाने के लिए शासन करना तो ये उचित ही है, तुम उनके रक्षक हो, भक्षक रक्षक, तो उनकी रक्षा करनी चाहिए ना, रक्षा करनी चाहिए। अच्छा जी, उनका तुम भक्षक हो तब तो एक प्रकार से थी चोरी होगी नहीं, तो बोलो कैसे, कि तुम भोजन आदि करते हो, बोलो करता हूँ, कपड़ा पहनते हुए पहनता हूँ, कपड़ा किसका, भोजन किसी का, बोले भगवान का, शरीर नहीं भगवान का, तो खाते पहनते क्यों, बोलो शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा क्यों, बोले भगवान की चीज है इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्यों तो इस शरीर से थी भगवान का काम करना, बहुत अच्छी बात, खाओ पहनो कोई इसकी बात नहीं, शरीर की रक्षा के लिए खाने पहने में कोई आपत्ति नहीं, ख्याल करो शरीर की रक्षा के लिए खाते पहनते हो या कोई स्वाद भोग ऐसे आराम के लिए करते हो, स्वाद भोग ऐसे आराम के लिए भी किया जाता है, तो वो जो ये विचार करो कि वो शरीर की रक्षा के लिए हुआ, तो भगवान के लिए तुम्हारे लिए, तुम जो भोजन करते हो शरीर की रक्षा के लिए, ये तो उचित काम करते हो, उसमें जो तुम्हारे को स्वाद आता है और उस स्वाद के पक्ष करते हो, तो वो काम तो भगवान का नहीं, तुम्हें भगवान के लिए कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारा अलग व्यक्तिगत है, ये थोड़ी है, ये तुम ईश्वर के हैं, उसे विष्णु की चोरी करते हो, धन की चोरी करते हो, भगवान की अर्पण कर चुके धन की चोरी करते हो, शरीर रक्षा के लिए शरीर निर्वाह के लिए करते हो, कोई पाप नहीं, पाप कहती है शारीरिक केवलम कर्म पूर्ण महात्मा चिकित विषम, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ पुरुष दोष का भागी नहीं होता, तो क्या करना चाहिए, अनासक्त भाव से थी विश्व के साथ में संबंध रखना चाहिए, आसक्ति लेकर के नहीं, और ज्ञानी महात्मा जो पुरुष होते हैं वे अनासक्त भाव से थी कर्म करते हैं, अनासक्त भाव से थी विश्व का उपभोग करते हैं, तब वो उबाल के रहते युवा इंद्रिया थे सुन कर्म सुन सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी युवा रुद्रस्तुच्यते, जिस काल के मन ये है विषयों के बीच के मन आशक्त नहीं होता, जिस काल के मन ये क्रिया जो कर्म करता उसमें आशक्त नहीं होता, उस समय में ये सर्व संकल्पों का त्याग जो पुरुष योगारूढ़ कहलाता है, ये तो बड़ी अच्छी बात, तो इसका भाव यह है कि अपना समय जो है भोग में नहीं बिताना चाहिए, शरीर के रक्षा के लिए तो उसकी बात नहीं, शरीर की रक्षा करते करते भोगों के बाद नहीं फंस जाना चाहिए, तो पांच प्रकार के जो विषय है शब्द सप्रसन्न पुरुष धर्म, उनके साथ में संसर्ग करने में कोई दोष की बात नहीं है, किंतु उसमें रस नहीं लेना चाहिए। पुष्प माला इतर फूलेर ये सब जो चीज है वह आकर के प्राप्त हो जाए तो उसमें रस नहीं लेना चाहिए। ये प्राप्त हो जाए तो देवताओं के समर्पण कर दो। इसी प्रकार से कोई भी विषय भोग आकर प्राप्त हो गए, भोजन करने की चीज है, कोई कपड़ा है उसको पहनने की चीज है, कोई ओढ़ने की चीज है, जिसे साल है ओढ़ने की चीज है, तो साल की जरूरत नहीं जब कमने से अपना काम चल जाए। शरीर की रक्षा के लिए शीत निवारण के लिए आवश्यकता है ना, तो कमल भोज रात में शेर की जरूरत है, भूमि पर शयन कर, वो जो भूमि पर शयन करने से नींद कम आती है तो फिर बीमारी बढ़ जाती है, तो शरीर के लिए उपयोग नहीं होता है। तो अच्छा कोई साधारण चीज बिछा लो जहां तक हो सके, कोई कम्बल है कोई चटाई है या जिससे काम चल जाए कम से कम, आराम की दृष्टि से कुछ मत बिछा, शरीर की रक्षा के लिए बिछा सको, शरीर को देख लो कि इसके लिए कोई दर्द नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, बीमारी नहीं हो, बुखार नहीं हो या सर्दी हो रही या ये सब थोड़ा जागता करो, बीमार हो तो रोई की चीज बिछा जिसके प्रकार से अपना निर्भाव कर, तो आराम का त्याग कर। और ऐसा उसका नाम है कि जो विशेष एक प्रकार से भोगों को भोग करके मूज करना, उसका तो एकदम ही त्याग कर देना चाहिए। और विषय है इनका उपभोग एकदम छोड़ देना चाहिए, शब्द सप्रसन्न उपरेश धर्म, इंद्रियों का विषय है तो इसमें इंद्रियों का विषय भी करो, उससे तो आपको बहुत लाभ होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। राग द्वेष व्युक्ति विषय चरण आत्म से विजय आत्मा प्रसाद में गच्छति, प्रसाद सर्व दुखा नाम हमें शुभ जाए थे प्रसंकेत सुसु बुद्धि परिवर्तित। कहते हैं राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा, और कैसी इंद्रियां कि जो अपने कंट्रोल में है, मन अपने कंट्रोल में है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा उसे विश्व में जो विचरण करता है वह प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसाद जिसकी प्रसन्नता, प्रसाद अंतकरण की शुद्धि, प्रसाद ईश्वर की दया, तो वह ईश्वर की दया का पात्र बन जाता है, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध अंतकरण होकर उसके मन सात्विक प्रसन्नता होती है, उस सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों की हानि हो जाती है, उस सात्विक प्रसन्नता से बुद्धि उसकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिर होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो परमात्मा की प्राप्ति तक वह पुष्प हो जाता है। क्या करने से, विश्व के मन विचरण करने से, न कि सुख बुद्धि से विश्व का अनुभव करने से, विश्व के मन विचरण करने से। नेत्र जो है इसका काम देखना है तो नेत्रों से देखो, एक स्त्री को नेत्रों से देखते हैं, पाप बुद्धि से भी देखते हैं, धर्म बुद्धि से भी देखते हैं, तो पाप बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। नासिका का काम है सुगंध लेना, तो सुगंध भगवान के चरणों में चढ़ाई तुलसी की भी सुगंध लेते उस धार्मिक भाव से, और भोग के दृश्य से इतर फूले रीता जी की भी सुगंध लेते हैं, तो वो नहीं चाहिए। इसी प्रकार से थी कानों से सुनने का काम है, तो सत्संग की कथा कीर्तन की बात भी कानों से सुनी जाती है, और कानों से थी वो राष्ट्रीय गान भी सुना जाता है, जो रेडियो में कभी कभी बोलता है, तो कानों काम तो सुनने का है, तो कानों से थी हम सुने किंतु राग द्वेष से नहीं, भोजन करें किंतु राग द्वेष से नहीं, इसी प्रकार से विश्व के मां विचरण करना जो है वो तो मुक्ति का एक प्रकार साधन है, विश्व में विचरण करना, किंतु विश्व का जो उपभोग करना है वो खतरे की। तो जब भगवान के सब चीज अर्पण कर दे फिर उसका उपभोग हम करें तो ये चोरी। किसी को गा दान दे दी, दान दे देने के बाद में गाय को चराना पाना ये तो उत्तम बात है, फिर दान की नजर छिपा कर उसे दूर भी दूरिया आज अपने घर में ले जाना, आज ब्राह्मण को पूछा जाना, तो वो तो चोरी है। इस प्रकार से की सब चीज जब भगवान के अर्पण कर दी तो भगवान की सब चीजों की रक्षा करना ये तो अपना काम है। तो इस तरह से थी अपने ये रुपयों का चुराना है कि सब रुपये भगवान की, तो सब भगवान के तो भगवान के काम में लगना चाहिए। तुम चाहे इकट्ठा करो कोई हर्ज की बात नहीं, भगवान के काम के लिए भगवान की सेवा के लिए इकट्ठा करने में कोई हर्ज की बात नहीं, चाहे लाख रुपया इकट्ठा करो चाहे करोड़ करो, किंतु ऐसा आराम और भोग के लिए नहीं। ऐसा यदि करते हैं तो एक प्रकार से रुपयों का चुराना है और क्या, तो अपना समय बहुत दामी समझ करके बिताना चाहिए। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना समय बिताना चाहिए। तो संसारी की जो पदार्थ है ये सब भगवान रुपये भगवान की, तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। का मन इनकार नहीं रखना चाहिए, मेरे पास 2 लाख रुपया है तुम्हारा धोने भगवान का, रक्षा करो क्योंकि उसका उपभोग ना, उसमें अपनता तो है कृपया मेरा है, उस अभिमान करके जो एक प्रकार से उसको अपने मान बढ़ाई के काम में जाना का उपभोग करना है। और रक्षा करना कैसे कि जैसे बंकों के बीच के ना और सरकार जो गवर्नमेंट उनके खजाने में लाख रुपए रहते हैं, सिपाही लोग एक प्रकार से थी गश्त लगाते हैं परिवार लेकर के कोई बंगों को लेकर करके तो फिरते हैं खजाने की रक्षा की, उसमें वो चुराने लगे तो मन का बाजू है, तो रक्षा करो खूब उसमें चोरी मत करो। उन रुपयों को भगवान के काम में न लगा करके हम अपने ऐसा आराम के काम में लगाना वही चोरी करना। इसी प्रकार से थी समय की चोरी, समय कितना की 24 घंटा, 24 घंटा में 6 घंटा तो आप सहन करो, 18 घंटा भगवान का काम करो। आप की जो चौकसी का काम है चौकीदारी का 18 घंटा का काम आप 6 घंटा सो युक्त आर विहार से समझा, युक्त आर विहार के अनुसार चेष्ट सकु युग सुप्रा योग होती दुखा, दुख के नाश करने वाला योग उत्पन्न होता है इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करने से। तो युग तो हार विहार के मान योग था उचित, तो 24 घंटा तो उसका 4 विभाग कर दिया 6 चौक 24, तो आप बिहार के में 6 घंटा लगाया। अरे युग तो चेष्ट से कर्म सु, तो कर्मों के वहां चेष्टा करने में जीविका के लिए हम कर्म करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, तो 6 घंटा उसमें लगा दिया। अभी तो सुपना वो दृश्य योग उसको कहते हैं कि जागना, तो 6 घंटा सहन करना और 6 घंटा अपने साधन करना, तो इस तरह से 24 घंटा आर विहार जब 3 घंटा में जाओ एक पैर में तो उस तरह साधन में और बढ़ा दो। जीविका का निर्वाह यदि 6 घंटा में न हो तो सखी जगह 9 घंटा कर लो कोई हर्ज की बात नहीं, किंतु सब समय के बीच के मन परमात्मा की प्राप्ति का साधन करते रहो, भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान और निष्काम भाव, ईश्वर के मां श्रद्धा प्रेम, ये जो खास खास जो चीज है इस साधन को करते रहो। तो समय का तुलना क्या है कि 24 घंटा में 24 घंटा मैं हर वक्त हमारे को जब ध्यान करना चाहिए तो मेरे 6 घंटा सोते हैं ना, मैं सोते तो क्या आज की बात है, 18 घंटा में जो काम करता है 6 घंटा सपने में वही काम करता है। इसलिए जागृत में तुम 18 घंटा अपना अभ्यास करोगे तो 6 घंटा वही अभ्यास होगा। तो सब समय के बीच के मैं जब पर ध्यान क्या कर सकता है, बोले ध्यान करना तो मामूली बात है, ध्यान तो एक बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा के तत्व को समझ लिया कि परमात्मा इस प्रकार से समझ रहे कि मैं व्यापक है। जैसे बिजली के तार में समझो बिजली है, दिया शाल में जैसे अग्नि है, और समझो कि बर्फ के में जो जल है, इस तरह से परमात्मा सबके में व्यापक है। तो यह बात समझ में आ जाए तो बस एक प्रकार से वो निश्चय तो कायम रहे, तो सिद्धांत है, सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि परमात्मा समझ रहे हैं। वो बात फिर दूर कैसे हो सकती है जीते जी, वो तो स्वप्न में भी उसको नहीं भूलता, सुसुप्ति में उसको नहीं भूलता, उसकी सदा स्थिति उसमें रहती है। सिद्धांत जब समझ लेता है मनुष्य तो परमात्मा के तत्व को समझ जाता है, या विवेक के द्वारा परमात्मा के तत्व को जान लेता है। बुद्धि के द्वारा जो बात समझ गई उसने सदा ही अपनी स्थिति रखी, बुद्धि से जो परमात्मा का स्वरूप समझाया उस समझ के अनुसार मन का उसमें लगा देना ही ध्यान है। उसी बात के मन को रखना ही ध्यान है। तो उसमें मन हर वक्त कैसे रहेगा, उसमें जब आनंद का अनुभव करेगा, परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप ही है, जब ये समझ लिया कि परमात्मा आनंद स्वरूप ही है तो फिर हमको करना क्या है कि आनंद का ही ध्यान करना है, आनंद का ही चिंतन करना है, मन से आनंद जो है परमात्मा का स्वरूप उसका ही मनन करना है। और मन से करना क्या है तो मन आनंद को छोड़ करके के फिर बाहर नहीं जाएगा। यदि आनंद का आपको अनुभव नहीं है तो फिर परमात्मा का ध्यान कहाँ, परमात्मा का स्वरूप तो आनंद में है। जब आप इस बात को समझ गए परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि आनंद स्वरूप है, कैसा आनंद है कि वो चिन्मय आनंद है, बुद्ध स्वरूप आनंद, उस आनंद का अनुभव आनंद को ऐसा आनंद, कैसा आनंद है कि वो वास्तव में है, नित्य है, सत्य है और अपरिमित है और आनंद ही आनंद है, इस वास्तव आनंद घन है।